ओम शांति। दुआओं का दामन तो आप लोग भाई साहब के मुख से सुना कि कैसे दुआएं मिलती है, बाबा की, मम्मा की, दादी की, प्रैक्टिकल सुना। शायद क्लास सुनते तो एक टॉपिक पर भाई साहब क्लास कराते हैं, आज अनेकों प्रकार की अनुभव युक्त प्रश्नों के अंदर अपना अनुभव भाई साहब ने सुनाया। कितनी दुआएं भाई साहब के पास है, जो दुआएं चला रही है, और आज भी भाई साहब दुआएं, कोई भी पेशेंट होगा तो भाई साहब के पास गया उसका कल्याण हुआ ही पड़ा है। नजदीक जाते हो ठीक हो गया, तो हम तो ये कहेंगे कि कितनी ये सभा महान भाग्यशाली आत्माओं की ये सभा है। दुआओं के खाता जमा करने वाली आत्माओं की सभा है, जिनको आज कौन आ रहा है मिलने के लिए? बाबा आ रहा है, सचमुच आ रहा है, सचमुच आ रहा है। तो भगवान से लोग दुआएं मांगते हैं, भक्ति मार्ग में, मंदिर में जाकर के, मस्जिद में जाकर के, गुरुद्वारों में जाकर के हम दुआएं मांगते थे, और दुआओं का दाता, दुआएं देने वाला स्वयं आज आ रहा है। किसके पास आ रहा है? भक्तों के पास आ रहा है, कहीं मंदिर में आ रहा है, गुरुद्वारे में आ रहा है, कहाँ आ रहा है? हमारे पास आ रहा है। तो ये सब कौन सी आत्माएं बैठी हैं? दुआओं के खान जमा करने वाली आत्माएं बैठी है या नहीं है? दुआएं देने के लिए, आज तक तो दुआएं लेने के लिए आदमी जाता था, प्यास लगती है कुएं के पास जाते हैं, नलके के पास जाते हैं, यहाँ तो प्यास लगी नहीं, नलका, कुआं, सागर सामने आ गया। तो कितना भाग्यशाली आप सब आत्माएं हो, है या नहीं है? है ना? तो दुआएं, हम लोग आज इस, कोई बनारस से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई और जगह से आया है, कोई नेपाल से आया है, यही है ना? लेकिन भगवान दुआएं देने के लिए कहाँ से आ रहा है? परम धाम से आ रहा है, बाबा परम धाम से। तो आप कितनी योग्य आत्माएं हो? भाई साहब जा रहे हैं, एक हाथ के ताली बजा दीजिए, फिर हम शुरू करें। थैंक यू। तो सोचने की बात नहीं है, जन्म ही हमारा दुआओं से हुआ है। हम पुण्य आत्मा थे, पिछले जन्म में कोई ऐसा पुण्य का काम किया है, 84 जन्मों में कुछ पुण्य का काम किया है जो बाबा ने अपना बना लिया। परमात्मा को नई दुनिया की स्थापना करनी थी, संकल्प चला उसको परम धाम में, तो वहां से नजर फैलाया, परम धाम से देखा, करोड़ों आत्माएं इस धरा पर हैं, लेकिन उस करोड़ों आत्माओं में से किसको चुना है? सोचिए, हम बच्चों को चुना है ना? तो इसके योग्य थे तो उनका नजर हमारे ऊपर पड़ी है। तो जब परमात्मा की नजर हमारे पड़ी है, तो आप सोच सकते हैं हम कितनी महान आत्माएं हैं, दुआओं के पात्र आत्माएं हैं। मांगने की जरूरत नहीं है। राजा का लड़का कभी अपने बाप से, राजा से धन मांगेगा क्या? कुछ चीज मांगेगा क्या? दुआएं, धन, संपत्ति, सारा राज पाठ बच्चों के लिए ही होता है। होता है या नहीं होता है? तो परमात्मा दुआओं का सागर है, किसके लिए है? हम बच्चों के लिए है, दे रहा है, जितना चाहे हम अपने अंदर भर लें। ये वही समय है, 84 जन्मों का रोल हम प्ले कर रहे हैं अपने किसमें, डिस्क में, अपने अंदर भर रहे हैं, आत्मा में भर रहे हैं 84 जन्मों का रोल। तो कितना खुशी होनी चाहिए, कितना उमंग होना चाहिए। संकल्प हमारे बड़े करें, उसके पहले हम हाजिर हो जाएं, हाँ ये सेवा हम करने के लिए तैयार हैं। उनको सोचना नहीं पड़े ये कौन करेगा, नहीं, इतना जी हाँ जी हजूर, उसमें दुआएं मांगना नहीं है, ऑटोमेटिक मिलता है। आज दुनिया में दुखी हैं, अशांत हैं, प्रैक्टिकल है या नहीं है, चाहे भक्त आत्माएं हैं, चाहे ज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे साधु जो भी हैं इस सृष्टि पर, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन सुबह उठ करके पूजा करते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं? मांगते हैं ना, शांति मांगते हैं, सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं। तो वो मांगते हैं और हम बाबा के बच्चे सुबह उठते हैं, बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं, बाबा के पास जाते हैं, बाबा से शक्तियां लेकर के क्या करते हैं, सारे विश्व को देते हैं। तो हम कौन हैं? दाता हैं। किसके? सुप्रीम दाता के बच्चे, मास्टर दाता हैं। तो देने वालों को दुआएं मांगने की जरूरत पड़ती है क्या? केवल निमित्त बनना है, कुछ नहीं करना है। हमारा भाग्य है, भगवान ने हाथ पकड़ा है। लोग भक्ति मार्ग में, मंदिरों में, मस्जिदों में मांगते रहे हैं, किसी को साक्षात्कार हो गया वो दीवाने हो गए। मीरा को साक्षात्कार हुआ था, नारद को साक्षात्कार हुआ था, सूरदास को साक्षात्कार हुआ था, भगवान मिला नहीं था। 82 साल उनको पढ़ाया नहीं, 82 साल किसको पढ़ाया है? ये महान आत्माओं को पढ़ाया है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के पढ़ाया है। तो लेकिन उनको 1 सेकंड का साक्षात्कार दीवाना कर दिया, सूरदास ने आंखें निकाल दिया, अरे भगवान का साक्षात्कार कर लिया, अब इस आंखों से मैं कुछ दुनिया की चीजें देखनी नहीं है। मीरा को साक्षात्कार हुआ, राजपाट छोड़ दिया, राणा फैमिली को छोड़ दिया, कितना उसको कष्ट दिया गया, जहर का प्याला दिया गया सभा में, प्याला देने वाला, जहर देने वाला रो रहा है कि अब ये मरेगी, और वो हंसते हंसते ईश्वर की याद में पी लिया, अमृत समझ के पी लिया। पिया या नहीं पिया? तो दुआएं किसको मिली? हम बाबा की श्रीमत पर चले, ईश्वर की आज्ञाओं पर चले, और आज्ञाएं रोज रोज मुरली में देता है। देता है या नहीं देता है? कोई ऐसा मुरली नहीं होगा साकार या अव्यक्त का जिसमें आज्ञाएं नहीं मिलती है, बच्चे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो हमारा भाग्य है, हमको कदम कदम पर बाबा चला रहा है, सिखा रहा है, हमको कदम कदम पर मदद कर रहा है। हम सुबह उठ करके बाबा के पास गुड मॉर्निंग करने जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, तो दुआओं का खजाना खुला रहता है। बाबा कहता है कि बच्चे जितना चाहिए उतना लो, लेकिन हम सब बाबा के बच्चे बहुत भोले भाले हैं, तो थोड़ी सी दुआएं मिल गई, कोई बड़ों ने बहुत महिमा कर दिया, दुआएं दे दिया, कोई पेशेंट की सेवा किए, दुआएं दिए, खुश हो गए। बाबा को ऊपर से तरस आ रहा है, बाबा दुआओं का खान खोल करके बैठा है, बच्चे दो मुट्ठी दुआ लेकर के खुश हो रहे हैं कि हमारे दोनों मुट्ठी में दुआ है। नहीं, बाबा दुआओं के खान के मालिक बना रहा है। जैसे बाबा ने कहा कि हम दो मुट्ठी हीरा लेकर के खुश हो जाते हैं, हमारे दोनों मुट्ठी में हीरा है, अरे बाबा हीरे की खान की मालिक बना रहा है। तो हमको केवल आज्ञाओं पर चलना है, इशारों पर नाचना है, चलना भी नहीं है। ईश्वरीय इशारा मिलती है, बाबा की इशारा मिलती है, बड़ों की इशारा मिलती है, हमारी निमित्त बनी बहनों की, टीचर्स बहनों की इशारा मिलती है, हम सेवा करते रहें। ध्यान देने वाला वो है, अभी भाई साहब के मुख से सुना, प्रदर्शनी के चित्र आबू रोड से लाए और बाबा अपने कमरे में ले जाकर के अपने साथ ब्रह्मा भोजन खिलाया। कितना बड़ा भाग्य है, भगवान के रथ के साथ, भगवान बाप दादा के साथ बैठ करके ब्रह्मा भोजन मिले। सोच लो कितना, कोई भी प्रदर्शनी का चित्र ला सकता है, लेकिन दुआएं आज्ञाकारी बन करके, उन्होंने गर्मी नहीं देखा, धूप नहीं देखा, नाश्ता नहीं देखा, दीदी को या बाबा को ये नहीं कहा बाबा हम अभी नाश्ता नहीं किए हैं, नहीं, आज्ञा मिली चले गए। उसका फल क्या मिला, दुआएं क्या मिली, कि हमको ब्रह्मा भोजन स्वयं बाप दादा के साथ बैठ करके बाबा ने कराया। उसी तरह से मैं अपना अनुभव भी हम सुना दें कि हम एक बार बॉम्बे से आ रहे थे कोई पेशेंट की सेवा करके, दोपहर का टाइम था, दीदी दादी सब दादियां पांडव भवन में, छोटा एक रूम है वहां, वो लोग एक साथ भोजन करते थे वहां, करते उस समय सब दादियां भोजन कर रही थी। तो मैं गेट से आया तो मैं देखा कि दादियां भोजन कर रही है, तो मैं सोचा कि रूम में जाऊंगा तो दादियां भोजन करके अपने अपने रूम में चली जाएगी तो फिर हमको मिलना मुश्किल होगा। हम सोचा कि एक मिनट हम जाकर के दादी के हेलो कर दें, ओम शांति कर दें। मैं दादी के पास ओम शांति करने गया, सब दादियां भोजन कर रही थी, तो दादी ने देख करके मैं ओम शांति कहूं उसको, पहले ही दादी बोलती है अरे बनारसी मैं आपको याद करती थी, याद कर रही हूँ। हम क्यों दादी क्यों याद कर रहे हैं, अब तो यीशु दादी को तकलीफ है, गॉल ब्लडर स्टोन है, डॉक्टर ने कहा है इनको बॉम्बे ले जाना है, आप जाएंगे? होंगे जी दादी। वही अटैची उठा करके दादी ने अपने पास भोजन कराया, दादियों के बीच में भोजन करके गाड़ी में बैठा दादी को लेकर के और बॉम्बे फिर से चला गया। जी हाँ करना है संगम में, और कुछ नहीं करना है, हाँ जी का पार्ट प्ले करना है। इसमें क्या होगा वो कुछ वो भी नहीं सोचना, सोचने वाला प्रोग्राम देने वाला कौन है, वो सुप्रीम है, वो दाता है, वो सब कुछ जानता है, किसको क्या देना है, किसको कैसे संभाल करनी है उसको पता है। प्रैक्टिकल बातें सुनाऊं, हम पेशेंट लेकर के अहमदाबाद जाते हैं, चार छह पेशेंट से तो कम होते नहीं है, पेशेंट लेके जाते हैं, मान लीजिए किसी का एमआरआई करा रहा हूं, किसी के सीटी स्कैन करा रहा हूं, किसी के सोनोग्राफी करा रहा हूं, उसमें टाइम लगता है, आधा घंटा घंटा भी लग जाता है। मैं इसके बीच में जाकर के ना खाना खा करके आ सकता हूं क्योंकि मेरे पास गाड़ी है, लेकिन नहीं, हम वो सोचते हैं कि अगर मैं खाना खा करके आ जाऊंगा तो वो पेशेंट है, वो भूखा है, मैं तो ठीक हूँ, निरोगी हूँ, ठीक हूँ, मैं खाना खा करके आऊंगा तो वो पेशेंट बाहर आएगा तो वो क्या कहेगा, नारसी भाई नहीं है भोजन करने गए हैं, दुआएं निकलेगी नहीं, बोलेगी उनके मन में ये हो जाएगा नहीं मेरे को छोड़ करके स्वयं भोजन करने गए हैं, नहीं वो चेक करा करके निकलते हैं, हम सामने रहते हैं तो उनकी दुआएं मिलती है, अरे बीमार मैं भूखा ये रहते हैं, तो ये दुआएं हमारा नहीं अपने लिए नहीं सोचना है, अरे मेरा भाग्य है किसकी सेवा करने का चांस मिला है, बाबा के बच्चों को सेवा करने का चांस मिला है, किसकी सेवा कर रहे हैं, दादियों को सेवा कर रहे हैं, वो दादियां कौन है जिसको बाबा ने 14 साल छोटे बच्चों की तरह पाला है, उन दादियों को नजदीक जाने का, अरे सेवा तो बाबा कर रहा है हमको नजदीक जाने का चांस रहता है, इससे बड़ा भाग्य इससे बड़ी दुआएं और क्या हो सकती है, हम तो ये देखते हैं दिल से हम सेवा करें, कोई भी भाई बहने बाबा की कोई भी बच्चे दिल से सेवा करें, बाबा दुआओं का खाता खोल देता है, केवल दिल से दिखावे कि नहीं हम दिल से सेवा करें, अरे किसकी सेवा कर रहे हैं, भगवान की बच्चे, भगवान सारी दुनिया को पालना कर रहा है, सारी दुनिया को दुख दर्द मिटा रहा है, जिनके बच्चे आज थोड़ी सी तकलीफ में हैं, कोई तकलीफ हो गई है, चलते चलते कोई बात हो गई है, उनके सहयोगी हम बनते हैं तो कितनी दुआएं मिलती है, अपने लिए नहीं सोचना है, हमारे लिए स्वयं परमात्मा है सोचने के लिए, हम दूसरों के लिए सोचें, हमारे को सोचने के लिए हमारा भाग्य भगवान के हाथ में है, अपने भाग्य के बारे में सोचना नहीं है, वो जैसे चाहें वैसे बनाएं, जैसे चाहें वैसे लिखें, एक ही संकल्प है कि हर घड़ी सेवा में सफल हो, आज हम जानकी दादी को कल देखा शाम को, उनकी आवाजें कितनी बुलंद, कितनी पावर थी, कितना जोश था, 6 दिन से वो बिस्तर से उठी नहीं है, दादी के पास जाओ, भाई दादी क्या कर रही हैं, रेस्ट कर रही हैं, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, और जब ग्रुप आया तो शाम को 7 बजा दादी बोलती है हंसा मेरे को ले चलो, अरे इतने बाबा के बच्चे आए हैं, मैं मिलूंगी, मेरी तबीयत दुआओं का खाता खुला हुआ है, उनकी दुआओं से मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, और कल दादी इतनी जोर से इतनी अच्छी क्लास कराई, सोचो नहीं तो दादी 104 साल कोई खेल नहीं होता है, पांव नहीं चलते हैं, श्वास नहीं आ रहा है, इतनी वीकनेस है, लेकिन क्या गर्जन थी, दुआएं है ना, सारे ब्राह्मण परिवार की दुआएं है ना, बाबा तो दे ही रहा है तो अभी चल रहे हैं, लेकिन उमंग चाहिए, दादी में इतना उमंग है, कभी कभी हम लोगों को क्लास कराती हैं तो ये नशे से कहती है कि हम यज्ञ के शुरुआत में आई और जो उमंग उत्साह था वो आज भी 82 ईयर्स यज्ञ को हो गया, शरीर की आयु 104 साल हो गया लेकिन उमंग में कमी नहीं है, प्रैक्टिकल देखते हैं तो ऐसा उमंग, अरे भगवान मिला है, विधाता मिला है, किस बात की कमी है, किस चीज की कमी है, क्या चाहिए, क्यों हम मनहूस रहे, क्यों हम मन गम में रहें, अरे हमारे डिक्शनरी में गम का नाम निशान नहीं है, भगवान के बच्चे जो आज्ञा मिला, सोचना नहीं है, देखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, धुन में रहना है, अपने आप भगवान सब कुछ करेगा, बाबा सब कुछ करने के लिए वो देख नहीं रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, एक प्रैक्टिकल आपको बात सुनाएं, बाबा 73-74 की बात सुना रहा हूं, ओम शांति भवन में बाबा आए थे, उन दिनों में अंग्रेजों की विदेश की सेवा शुरू हुई थी, विदेशी बहुत संख्या में आते रहे, जब विदेशी भाई बहने आए बाबा से ऊपर मिलने के लिए आते थे, उन दिनों में बाबा सामने मुरली चलाते थे, मुरली पूरा करके एक एक ग्रुप बुलाते थे, ग्रुप से मिलते थे और एक एक बच्चों को टोली भी अपने हाथों से खिलाते थे, वो भी दिन हमने देखा है। तो अंग्रेज जब ये स्टेज पर आए, सामने बाबा उनको वरदान दिया और एक एक अंग्रेज से मिलते थे, तो कोई कोई भाई अपने बैग से या बहन अपने बैग से कार्ड देता है कि बाबा फलाने भाई ने फलाने बहन ने ये कार्ड आपको भेजा है, तो बाबा क्या कहते थे, बच्चा अमेरिका में है और जब उसको संकल्प आया मॉल में गया कार्ड खरीदने के लिए, तभी उसका याद प्यार पहुंच गया बाबा के पास। आप तो 8 दिन के बाद लाए हो कार्ड, 8 दिन पहले ही उसका याद पहुंच गया। अब आप सोचें, अमेरिका में बैठ करके, चाइना में बैठ करके, रसिया में बैठ करके अगर बच्चे याद करते हैं और बाबा के पास पहुंचता है, तो बाबा के लाल रतन, अगर हम बाबा को यहाँ याद करें, कहाँ भी रह करके याद करें, तो बाबा के पास नहीं पहुंचेगा, पहुंचता है, केवल हम याद में खोए रहें, लगन में मगन रहें, बाबा की याद पहुंचता है। हम जो याद करते हैं बाबा के पास पहुंचता है। तो हमको ये नहीं सोचना है कि मेरी याद बाबा तक पहुंचती है कि नहीं, मेरा योग लगा तो बाबा तक पहुंचा कि नहीं। हम बाबा को शुद्ध मन से, श्रेष्ठ मन से बाबा को याद करें और बाबा की आज्ञाओं पर, बाबा के शिक्षाओं पर ये जीवन, किसी को देख करके चलने वाला नहीं है, किसी को ये करने का नहीं है, जो बाबा हर सेकंड प्रेरणा दे रहा है, उस प्रेरणाओं को अपने जीवन में उतारना है। केवल ज्ञान नहीं सुनना है, ज्ञान सुना, ज्ञानी तो आत्मा ठीक है, लेकिन नहीं, अनुभवी बनना है, उस ज्ञान को अपने अंदर समाना है। हम सबको 7 डेज का कोर्स हम सब ने किया है, पहला लेसन हम सबको मिला, सबको बताया गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, राइट। सबको आत्मा का ज्ञान है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश किया तो ब्रह्मा को भी सुनाया, बच्चे तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। बाबा को धुन सवार हो गई कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। बाबा ने डायरियां लिखना शुरू कर दिया, डायरी भर गई तो दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया, धुन सवार हो गई। इससे क्या हो गया, बाबा का शरीर अपना भूल गया। जो भी बाबा को देखते थे तो एंजिल के रूप में देखते थे, फरिश्ते के रूप में देखते थे, देवता के रूप में देखते थे। साक्षात्कार होता था, ये सामने ब्रह्मा बाबा नहीं बैठा है तो श्री कृष्ण बैठा है, ये नारायण बैठा है, ये एंजिल बैठा है, वो धुन ने। और हमको धुन नहीं सवार हुई, ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूँ, तो आज भी पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ और कंप्लेन कर रहे हैं, दीदी दृष्टि अभी भी इधर उधर जाती है, अभी भी पुरानी दुनिया में दृष्टि जाती है, अभी भी हम पुरानी दुनिया में हमारी बुद्धि जाती है, भौतिक वैभव में जाती है। बाबा को इतना धुन हो गया, सब कुछ भूल गया। हीरे जवाहरात के बिजनेस करने वाला बाबा, क्या पैसा वो नहीं देखा होगा, पैसा उसके हाथ में नहीं आया होगा। एक भाई, उन दिनों में जो पुराने भाई बैठे हैं उनको पता होगा, छेदी पैसा होता था, तो वो एक गठरी, छेदी पैसे का एक गठरी ला करके बाबा के आगे रखा, गठरी खोला, पोटली, तो बाबा दूर से देखा, पैसे को हाथ नहीं लगाते थे। जब से बाबा, शिव बाबा के प्रवेशता हुई, कभी पैसा टच नहीं किया। दूर से देखा तो बाबा पूछते हैं, बच्चे इतने नलके खराब हो गए हैं कि तुम इतना वाशर लेके आया है? तो भाई हंसने लगा, बाबा ये वाशर नहीं है, ये छेदी पैसा है। तो बाबा के इतना रहम आया कि बच्चे हमारा भारत इतना गरीब हो गया कि इसको बीच से काट के निकाल दिया। देखो कितना तरस बाबा को। तो इस तरह से बाबा सब कुछ भूल गया। उसी तरह से हम लोग भी इतने धुन में रहे, इतनी लगन में रहे, इतनी मगन में रहे, कुछ भी याद न आए बाबा के सिवा। वो धुन हमारे लौकिक को संभालेगा, दुकान को संभालेगा, बिजनेस को संभालेगा, परिवार को संभालेगा। अज्ञान काल में लोग दुकान खोलने जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, फैक्ट्री खोलने जाते हैं, तो रास्ते में मंदिर आता है तो सिर नवा करके झुका करके जाते हैं। एक सेकंड सिर झुका करके जाते हैं तो उनको बरकत होती है, फायदा होता है। और हमारे साथ बाबा है तो हमारे कोई भी कर्म में कुछ नुकसान होगा? नुकसान हो ही नहीं सकता है। हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुआएं इकट्ठा करने की जरूरत है। आज हम देखते हैं गुलजार दादी के पास जाते हैं बॉम्बे में, दादी आराम से कुर्सी पर बैठी है, गहरी चिंतन में है। उनकी सेवा करने वाली बहनें और कामों में बिजी है तो मैं वहाँ कुर्सी लेकर बैठ जाता हूँ। मैं पूछता हूँ, दादी अब क्या सोचते हैं? तो मेरे को दृष्टि देती है, मुस्कुराती है और कहती है कि ये मैं कुछ सोचती नहीं हूँ। हम बोला कि बहुत गहरी चिंतन में है, आ तो दुनिया में बहुत दुख है, मैं ये सोच रही हूँ, ये देख रही हूँ, कैसे इनको दुख वो निपटारा किया जाए, दुखों से छुड़ाई जाए। स्वयं तकलीफ है, अपनी तकलीफ वर्णन नहीं करती हैं, दूसरों की दुआएं देने के लिए सोच रही हैं कि दुनिया भगत, दुनिया के लोग बहुत दुखी हैं, उनको कैसे सुखी किया जाए। जब दादी बड़े हॉस्पिटल में होती थी, ब्रिज कैंडी में दादी को रखा था, तो बड़ा डॉक्टर आता था उदवाड़िया, नंबर वन इंडिया का चेस्ट फिजिशियन, वो पेशेंट को दो मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देता है कभी भी। और जब दादी के पास आता था तो दादी अगर अपनी चेयर पर बैठी है तो दादी के चारपाई पर वो बैठ जाता था, अगर दादी चारपाई पर लेटी है तो चेयर पर बैठ जाता था। और उसको पूछने के पहले दादी पूछती है, डॉक्टर जी आप कैसे हो? पानी पानी हो जाता था। दुनिया में पेशेंट लिस्ट बनाकर रखते हैं कि बड़ा डॉक्टर आएगा, उसको ये बताएंगे, ये बताएंगे, ये बताएंगे, और दादी क्या पूछती है, डॉक्टर जी आप कैसे हो? ये हमारे बड़ों की दुआओं का खाता ऐसे जमा है। बीमार वो भी होते हैं, बीमार आज हम भी होते हैं, थोड़ा भी सर्दी जुकाम बुखार हो जाए तो घर में आवाज कर देंगे, मेरे को कोई पूछता नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं ले जाता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। हमारे बड़े शांति से पड़े हुए हैं। बाबा बैठा है ना, सुप्रीम सर्जन बैठा है, आपे ठीक करेगा, इतना निश्चय। और होता था शुरू शुरू में कोई दवाइयां नहीं होती थी, यज्ञ में कोई डॉक्टर नहीं होता था, न डॉक्टर को बुलाते थे। लास्ट के दिनों में 18 जनवरी की बात कर रहा हूं, बाबा को तकलीफ थी, बड़े भाई थे यज्ञ में, बाबा के पास गए पूछने के लिए, बाबा डॉक्टर को बुलाऊं? तो बाबा इतना नशे से जवाब देते हैं, अरे बच्चे बाबा तो सुप्रीम सर्जन से बात कर रहा है, आप किस डॉक्टर को बुलाओगे? इतना नशा, इतना बाबा को उमंग था, लास्ट दिन था, लेकिन नहीं, डॉक्टर नहीं, तकलीफ थी, बाबा से बातें कर रहा है। तो हम लोगों को भी दुआएं लेनी है तो बाबा के अलावा और कोई दुनिया में है नहीं। संभाल बाबा करेगा। हमारी जो ब्राह्मण लाइफ है, योगी जीवन लाइफ है, वो अनेक बीमारियों को दूर करने की बाबा ने युक्ति बता रखी है। आज हम दुनिया में लोगों को संदेश देते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है, हार्ट की बीमारी, लंग्स की बीमारी, टीबी की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, कैंसर, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये नॉन कम्युनिकेबल हमारी लाइफ स्टाइल गलत होने के कारण ये बीमारियां हो रही है, फैल रही है। बाबा ने ऐसा योगी लाइफ स्टाइल बनाया है, सुबह 3:30 बजे उठो, बाबा को याद करो, तपस्या करो, इतनी शांति आएगी, ब्लड प्रेशर अपने आप चला जाएगा। सुबह उठकर तैयार होकर के थोड़ा सा सैर करो, डायबिटीज अपने आप चला जाएगा। हम आज हार्ट के पेशेंट को बुला करके कोई मंत्र नहीं देते हैं, उनको एक्सरसाइज डाइट सिखाते हैं, उनको योग कराते हैं, वो इतना चात्रक होकर सुनते हैं, इतना अच्छा रुचि लेते हैं, 6 महीना मेडिटेशन करते हैं, उनकी 100% आर्टरी क्लीन हो जाती है। एंजियोग्राफी करके आए हैं, डॉक्टर ने बता दिया कि आपका 4 आर्टरी ब्लॉक है, 100% 3 आर्टरी ब्लॉक है। ऐसे पेशेंट यहाँ आते हैं, मेडिटेशन करते हैं और 6 महीने के बाद उनकी आर्टरी क्लीन हो जाती है। तो क्या हम बाबा के बच्चे, हमको चिंता करनी है कि मुझे बीमार हो गए तो कौन ठीक करेगा? आपे बाबा ठीक करेगा। केवल निश्चय चाहिए। हमने यहाँ शिविर करके लगा करके देखा, 500 शुगर लेकर के लोग आते हैं और 8 दिन यहाँ रखते हैं, उनको डाइट एक्सरसाइज मेडिटेशन सिखाते हैं और 7वें दिन 8वें दिन जब वो घर जाते हैं, उस दिन चेकिंग करते हैं तो 100-125 शुगर लेके जाते हैं। मिराकल योग में इतना पावर है। बाबा के दिनचर्या अगर हम फॉलो करें, बीमार हो ही नहीं सकते हैं। उसी तरह ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, ये सारी बीमारियां केवल हम दिल से बाबा को याद करें, रूटीन को फॉलो करें, हम शरीर के भान में ना आए, टेंशन में ना आए। कुछ भी बात हो गई, मान लो जो कोई बड़े, कोई किसी को कुछ बात करते हैं, हम अनुमान लगा लेते हैं, अरे मेरी शिकायत दीदी को कर रहा है, अरे वो कुछ सर्विस का भी बातें कर सकता है, तो उसी टेंशन में हम पड़े हैं, मेरी शिकायत दीदी तक गई, दादी तक गई। एक बार दादी ने कहा, अच्छा मान लो जो भाई शिकायत करके आपका गया है, एक बार दादी, बड़ी दादी क्लास कराई, तो दादी ने कहा कि मान लो जो आपकी शिकायत करके गया है, तो क्या दादी के पास इतना जजमेंट पावर नहीं है? आप वर्षों से हमारे साथ सेवा में हाजिर हो, सेवा कर रहे हो, तो दादी के पास जजमेंट नहीं है कि ये जो कहा है इसमें कोई संस्कार ही नहीं है, हमने आज तक देखा नहीं है, वर्षों से मेरे साथ काम कर रहा है, इसमें कोई आदत ही नहीं है, तो आप क्यों मान लेते हो कि ये हमारी शिकायत कर गया? अरे वो सुना गया, दादी इधर से सुनी, इधर से निकल गया, आप टेंशन में क्यों आते हो? अगर कोई बात दादी देखेगी तो बुलाकर आपको बता देगी, शिक्षा दे देगी। तो इसलिए कोई भी बातों में जाना नहीं है, किसी के लिए नेगेटिव संकल्प रखनी नहीं है। कोई कुछ भी कर दे लेकिन उसके लिए दुआएं ही निकालनी है। बाबा क्या कहता है, गाली देने वालों को गले लगाना है। कब गले लगाएंगे? सतयुग में चल करके लगाएंगे? नहीं, अभी ये संगम का समय है, कलयुग और संगम में, हम कलयुगी दुनिया में हम रह रहे हैं, संगम में हैं, बाबा के बच्चे हैं, लेकिन कहाँ रह रहे हैं, किसके साथ व्यवहार में हैं? कलयुगी आत्माओं के साथ में व्यवहार में है। तो हम कोई भी बात हो, किसी भी बात में हमको जानी नहीं है, बस धुन लगाना है, समय सफला करनी है, दुआएं लेनी है। तो मांगने से दुआएं नहीं मिलती है, सेवाओं से दुआएं मिलती है, दूसरों की सेवा करेंगे दुआएं मिलती रहेगी। समय हो गया, यहीं विराम देते हैं। ओम शांति। थैंक यू, आप सब इतना टाइम दिए। ओम शांति।